नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातम वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वजं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथमनीतं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखनितांश। नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबुद्ध्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितौ गौडदय पुष्पवन्तौ चित्र सन्दौ तमानुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम हैं बखे बलम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्न था। प्रातकालीन भगवत कक्ष में बड़राम हॉल में आज सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। तो आप लोगों अवश्य ज्ञात होगा कि आज बहुत ही पावन तिथि है और पूर्णिमा तिथि भी है, जिसको पंचांग का अनुसार देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो जगन्नाथ का बारे में लगभग स्कंद का सभी भक्तों को जानकारी तो जरूर होगा, लेकिन एक हमारे परंपरा है कि जिस दिन इसका आविर्भाव तिरुभाव व भगवान का भी आविर्भाव तिरुभाव भक्तों लोग का भी, तो उसी दिन उसी लीला को स्मरण करते हैं। तो आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। इसे जगन्नाथ कृष्ण गौर में भेद तो खाली मात्र रस का भेद है और भगवान का जन्म तो होता ही नहीं है, अजन्मा है, फिर भी भक्त का भक्ति से भक्तिभूत होकर और उनको भी जन्म लेना पड़ता है, जो कि सभी को जन्म मृत्यु चक्कर से उभार देते हैं, उनको भी जन्म लेना पड़ता है। लेकिन उनको जन्म बंधन का जो जो अरे चक्कर में नहीं ले पड़ते हैं, जैसे हमारे 84 चक्कर है, उनका 84 चक्कर सबको छुटाते हैं, लेकिन उन्होंने भी आते हैं लेकिन उनको इसका कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि भगवद गीता में प्रमाण है, भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर बताते हैं कि जन्म कर्म चमम दिव्यम एवं जैव तत्व तक्ता देह पुनर्जन्म नैति महामति स्वर। मेरा ये जन्म और कर्म ये दिव्य है, ये भौतिक जगत में जैसे 84 लाख जुनी का जन्म मृत्यु चक्कर चलता है, हमारे ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म जो और कर्म जो दिव्य है इसको जो जानता है वो हो फिर ये भौतिक जगत में चक्कर में नहीं आता है। तो आप सुने होंगे अवंती पाड़व और उज्जैन भी कहा जाता है, ये कई नाम है, लेकिन ये माड़व राज्य में एक महान विष्णु भक्त जो कि सूर्य वंश परापरम में आते हैं, हमारे 2 वंश एक चंद्र वंश एक सूर्य वंश, ये सूर्य वंश में एक महान धार्मिक राजा आए थे ये भौतिक जगत में, जिनके बाद में उनका नाम इंद्रदुम्न महाराज भी नाम है, जैसे भागवतम में एक इंद्रदुम्न महाराज का नाम आता है, बाद में जिन्होंने अरे सापवश एक हाथी का सिर मिला था। तो ये इंद्रदुम्न महाराज बहुत ही विष्णु भक्त पराण थे, अरे भक्ति हमारे भगवत गीता का सिद्धांत है कि नरनाम च नराधिप, जो मैं राजा का अंदर में मनुष्य व नर का अंदर राजा के रूप में आता हूँ, लेकिन आज का राजा और पहले का राजा में आकाश पताल व्यवधान है, लेकिन अभी का जो राजा है वो तो भक्त है, आप लोग जानते हैं उनका नाम भी जानते हैं दामोदर दास बोलते, जो भी हो तो उनका राज्य में अभी जी से हमारे वृंदावन धाम इस्कन मंदिर में सुबह से शाम तक भगवान का श्री विग्रह का अर्चन पूजन व आरती और अच्छे अच्छे द्रव्य से भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इंद्रदुम्न महाराज का राज्य में भी ऐसे ही सुबह से शाम तक उन्होंने का राज्य काल में लगभग ऐसे ही कालातिपात किया करते थे और प्रजा को अपना बच्चे के जैसे पालन करते थे, अपना संतान का जैसे इसे भेद बुद्धि नहीं किया करते। लेकिन बहुत दिन इसे अतिवाहित हो गया तो उन्होंने हर दिन भगवत कथा भी श्रवण किया करते थे, तो आज उनका मन में ये आया कि मैं कथा भगवान का सुनता हूँ लेकिन भगवान को दर्शन करना भी चाहता हूँ, तो भगवान कहाँ पर है? इसी तरह राजा को हो तो मालूम हुआ कि द्वारका वृंदावन और पुरी में होंगे, लेकिन ये एक नया और लीला भगवान करने जा रहा है, इसलिए है तो भगवान उनका जुगा माया का प्रभाव से उनका जो बुद्धि को अच्छा दी करके रखे होंगे। हठात राजसभा में उन्होंने उनका ये प्रश्न उठा कि भगवान के दर्शन करूंगा, लेकिन भगवान अभी वर्तमान में कहाँ विद्यमान है उसको मालूम नहीं था। ऐसे तो वैकुंठ में है भगवान, लेकिन भगवान बैकुंठ में थोड़ी रहते हमेशा के। नारद मुनि उनको बोला बताए थे, पूछे थे भी कि आपका मोबाइल एड्रेस है व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दीजिए। लेकिन भगवान क्या बोले, नाम तिष्ठा में बैकुंठे जुगी नाम हृदय मद भक्त जत्र गायंती तथा तिष्ठा में नाम। ये बात तो उनको ज्ञात था क्योंकि भगवान नाम रूप भी कलियुग में अवतार लिए चुके हैं, अर्चा विग्रह रूप में मंदिर में भी है, अरे कण कण में भी है, हर प्राणी का अंदर में भी है। तो उन्होंने पूछ दिए, कई तीर्थयात्री भी समावेश थे उसी में, तो जो भगवान का अवस्थान वर्तमान कहाँ पर है, ये बात जो उनका प्रश्न उठा और पूछ दिए उन्होंने, तो सभासद सब नीरव रहे, पात्र मंत्री जितना है। लेकिन एक सन्यासी वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि सन्यासी लोग का काम क्या है ना, महंत स्वभाव है तारित पामर निज कार्य लागे जान पर घर। साधु संत्या कोई काम बन नहीं था, बस मठ में खा के खट में सो सकते हैं। लेकिन ये बदजीव को उद्धार करने के लिए शहर नगर और गांव गांव में भी भ्रमण करते हैं। तो आज दैव को ये मालव देश देश का राजधानी में राजसभा में उन्हें विद्यमान थे, उनका नाम श्यामानंद। तो उन्होंने बतलाए ये भारतवर्ष में एक जगह है जो कि नवखंड मेदिनी है, हमारे भारतवर्ष जम्बू द्वीप है, इसमें दक्षिण दिशा में एक देश है, एक प्रदेश है जिसका नाम उत्कल है, उड़ीसा भी है, उड्र भी है, कई नाम है उसका, जो भी हो। तो उन्होंने बोला कि उसी देश में महुदधी, जो कि समुद्र को हम देखते हैं उसको महुदधी भी नाम है, तो उसी देश में और समुद्र का तट पे ही एक जगह है जिसको नीलकंदर कहा जाता है, नीलाद्री भी कहा जाता है। आगे रथ यात्रा के बाद भगवान जब लौट के आएंगे मौसिका घर से, भगवान जो प्रवेश करते उसका नीलाद्री विजय कहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही नीलाद्री है। और जो अपना बड़े मंदिर में प्रवेश करते हैं, श्री मंदिर में, जो कि द्वारका का प्रतीक है, और सुंदराचल बा गुंडीचा मंदिर श्रीधाम वृंदावन का प्रतीक है, तो भगवान सुनावेश होकर रथ में रहते, फिर विजय करते हैं, अंदर जाते हैं मंदिर में, तो उसका उत्सव का नाम नीलाद्री विजय। कोई मौका मिले तो आप भी दर्शन कर सकते हैं, दर्शन भी करना चाहिए, आँख का क्या काम है, नहीं तो आँख मोहर पंख जैसे ही रहेगा, दूतर बाँख है लेकिन का फायदा नहीं है। जो भी हो उन्होंने जब बता दिए तो फिर जाएगा कौन, कितना किलोमीटर है, कितना घंटे में पहुँच गया, फ्लाइट में जाएंगे, रात में जाएंगे, कार में जाएंगे, बैलगाड़ी में जाएंगे, लगभग उस समय जमाने का बैलगाड़ी में जाना आना करते थे, रथ में जाना आना का व्यवस्था थी उस समय। आजकल हो तो 160 किलोमीटर आप दिल्ली में बैठिए वहाँ 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, आप भुवनेश्वर वहाँ से 65 किलोमीटर पूरी 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो उस समय तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो फिर उन्होंने अपना जो कुल राजपुरोहित थे उनका छोटे भाई थे विद्यापति, तो उनको ठीक किए कि ये जा सकता है, क्योंकि इतना दूरी रास्ता है, फिर स्थान पाल पात्र का जो विचार नहीं करके कोई उठपटांग हो जाए तो फिर उसको फिर मामा का घर में जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिर इसलिए विद्यापति को ही चुना गया कि ये स्थान काल पात्र अनुसार और वार्तालाप में और वह भी चतुर भी है और परम भक्त भी है, इसलिए उनको ही ठीक किया गया। तो वो उन्होंने फिर ये पूरी के लिए रहना हो गया राजा पर, यहाँ पर मालाबा उज्जैन में जहाँ पर कृष्ण बलराम ने पढ़ाई की है, संदीपनी का मुनि का आश्रम भी आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं तो देखा नहीं राजा का राजमहल कहाँ पर है, आप लोग कोई देखा होगा, जैसे हमारा लाल किला है और भी दूसरा महाराज लोग का भी भगनावशेषर रहता है, लेकिन वहाँ तो हम देखा नहीं, महाकालेश्वर को देखा है, इस्कन मंदिर भी बन रहा था। तो उज्जैन में होगा उनका कोई, उनका जो और राजबीठा होगा राजा का, लेकिन आज का घटना तो नहीं है ही नहीं, सत्ययुग का घटना है। जब वे हो तो विद्यापति क्यों जब भेद दिए उन्होंने नदी जंगल झरना पहाड़ कई शहर कोई खान दर्शन करते हुए वहाँ पहुँचे। लेकिन उड़ीसा देश का वा उत्कल का शास्त्र में वर्णन है कि चार वर्णश्रम जो ब्रह्मचारी की गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये चार नियम का बढ़िया ढंग से वो राज्य का प्रजा लोग पालन किया करते थे। ऐसे नहीं कई मूर्ख भी नहीं थे, शास्त्र में वर्णन है जो कि जगन्नाथ भागवत स्कंद पुराण में भी कुछ संख्या में वर्णन है। सभी अरे छह प्रकार छह अंग जो शास्त्र का जो है ये सभी में पारदर्शी थे और सब कलाकार थे, सब विष्णु भक्त थे और अभी भी है। लेकिन आज कली का प्रभाव क्या है, जल का फल चालू करते हैं, जल का फल जलते हैं ना आप लोग, इधर तक चलता नहीं है मछली पूरी में देखना पूरा ढेर का ढेर चलता है, क्यों पारादीप बंदर नजदीक है वहां से सप्लाई आता है। लेकिन शास्त्र में यह भी वर्णन है, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि वहाँ जो मछली खाते हैं हविषा अन्न का फल मिलता है। हम जो व्रत करते हैं जो आर व्रत का प्रसाद पाते हैं हम लोग अनुकल्प, तो वहाँ मछली खाते हैं तो वो व्रत का फल मिलता है। तो उन लोग का दृष्टि नहीं करना चाहिए, सावधान से वहाँ जाने आने में बरतना चाहिए जो भी हो। तो षडंग शास्त्र से और विष्णु भक्त और नाचने गाने भी बहुत उस्ताद थे। हमारे स्वाभाविक ब्रज में देखना भक्त लोगों को बोलने में नाचने में बहुत उस्ताद है सभी लोग, क्योंकि उनका ब्रजवासी का एक नहीं पहचान है, उनको नाचना गाना जरूर आता है, कथा बोलने और भगवान कृष्ण कन्हैया के परम भक्त ही है। क्योंकि कृष्णदास कविराज बोले कि गोपाल रे सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, ब्रजवासी का प्रति गोपाल का सहज प्रीति, ऐसे ही उड़ीसा वासी का सहजा प्रति जगन्नाथ के। जगन्नाथ बड़े सुभद्रा महाराणी की हर जगह में भगवान अपना और असर जमा के रखे, एक दूसरा का रिमोट नहीं चलती है। जो भी हो और माताएं पतिव्रता और धन धन से परिपूर्ण, कोई गरीब नहीं थे उस समय, आजकल तो अपना कर्म पालन का अनुसार कुछ जगह गरीब कुछ जगह धनी है। तो इसी प्रदेश में धीरे धीरे प्रवेश किए कौन ना विद्यापति, घना जंगल था निबिड़ जंगल था, और जंगल में बहुत सारे हिंस्र जीव जंतु भी वास किया करते हैं, जैसे हाथी है शेर है भल्लूक है और गिदड़ वगैरह भी, कोई पहाड़ का गुफा में अजगर सर्प भी रहा करते थे। लेकिन ये नीलकंदर में जहाँ पर अभी भगवान विराजमान है वहाँ सभी लोग मित्रवत व्यवहार किया करते थे। मयूर का साथ सर्प कोई मित्र करता है, मिलते ही राम नाम सत्य को तो ब्रेकफास्ट व लंच कर देगा, चूहे का साथ बिल्ली, शेर का साथ हिरन। लेकिन वहाँ पर ये भक्ति का प्रभाव से ये भक्ति सब किया करते थे और भजन जरूर किया होंगे वो करते होंगे, लेकिन पता नहीं उस समय कौन से नाम जप किया करते हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ तक कीर्तन है, जैसे हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, क्योंकि चार युग के लिए चार युग का धर्म होता है। तो जो भी हो ये हिंस्र जंतु देखते हुए उनको जरूर आनंद होगा, क्योंकि कोई शेर दहाड़ने नहीं आया कि वह कोई गीदड़ दांत में नहीं दिखाया होगा, और आपस में ऐसे मित्रवत है तो विद्यापति को जरूर आनंद में उन्होंने विभूर हुए होंगे, क्योंकि जगन्नाथ का ये प्रभाव है। लेकिन उस समय जगन्नाथ रूप में उन्हें नहीं थे, फिर भी बाद में जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जो भजन में है जो भी हो। तो उन्होंने शाम का समय में एक सबरपल्ली में पहुंचे थे, जैसे अभी उड़ीसा में 30 जिला है, तो उसी समय भी लोग होगा से 12-13 होगा, हमारे समय में 13 जिला था, अभी तो 30 हो गया। जो भी हो ये सबर पल्ली में पहुंचे हुए थे, वो गांव में पहुंचे। लेकिन वो सबर पल्ली का भी एक राजा थे, छोटे छोटे राजा हर प्रदेश में रहते थे जी यहाँ पर जैसे, और हर जगह में रहा करते थे महाभारत जी से वर्णन है। तो सबर पल्ली का राजा विशाभिष महाराज थे, और उन्होंने ही ये जगन्नाथ का पहले जो रूप था नीलम माधव रूप में, जिसको शास्त्र में वर्णन है कि उनके नीलम नामक जो धातु है उससे बना हुआ था। तो इसी नीलकंदर में ये नील नीलमणि वहां विराजमान थे नील माधव, और देवता लोग उनको पूजा किया करते थे। उसका साथ साथ हमारे जो विशाभसर राजा परम भक्त विष्णु भक्त उन्होंने पूजा किया करते थे। लेकिन वन्याश्रम विवाद का अनुसार अपना जो शिक्षा अपना बेटी बेटा को पहले से ही दिया जाता है, आचार व्यवहार में उनका जो एक नौता बेटी ललिता थी वो भी बहुत प्रवीण थी। तो विद्यापति जब आए शाम का समय थके मंदे, इतना दूर रास्ता से गए हैं, कभी खाए नहीं, और इधर इंद्रद्युम्न महाराज उसी दिन से कुशासन बिछा के तपस्या में है, तो अनशन व्रत है। तब जब आए तो अतिथि को से जिस सत्कार करना है उनको पाद अर्घ दे के फिर सत्कार किए, और उसी समय शायद पंखा तो नहीं था होगा, हाथ में पंखा लगाए अतिथि सेवा अतिथि देवो भव। अब ऐसे भी करना चाहिए, पहले उनको पैर धुला देना चाहिए, लेकिन आजकल जमाना ऐसा है कि बूट पहन के रहते कहाँ पैर धोएंगे, डाइनिंग हॉल दूसरा जगह में रहता। लेकिन हम लोग सनातन धर्म में हम जुड़े हुए हैं, वैदिक सभ्यता में जुड़े हुए हैं, तो ये आचार व्यवहार हमको करना चाहिए। तो उनको फिर कुछ पानीय पदार्थ तो दिए होंगे पान करने के लिए, सर वहाँ फिर जब विद्यापति आए थे उस समय ये विश्वासु सबर घर में उपस्थित नहीं थे, हर दिन सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। जब विद्यापति विश्राम भी किए होंगे शाम को समय, जब पिताजी आए बा विश्वासु सबर आए तो उनको खबर दे दिए होंगे, वो भी अहोभाग्य समझे। क्यों कि अवंती से इंद्रद्युम्न महाराज का एक सेवक आए हैं, एक ब्राह्मण आए हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मण का स्थान बहुत उत्साह में दिए, इसे बताते मैं तो खाता ना उनका मुख से खाता हूँ। आज अतिथि आए तो उनका सत्कार अच्छा से हुई होगी, इसे उनका भी आनंद हुआ और ललिता को पूछे होंगे, लेकिन ये नहीं पूछेगा आप किसके लिए आया है। तो इसे ही एक दिन नहीं, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, महीना भर चलते चला रहा दिन, और हर दिन विशाभसु अपना सेवा चालू रखा है। लेकिन जो विशाभसु सबर ने वहाँ से आपस आते हैं चंदन अगुर और भी सुगंधित द्रव्य से, और एक उनका जो कुटिया प्रमुदित हो जाता है तो उसको भी आभास होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद तो वो विवाह बंधन में बंध गए विद्यापति ललिता का। तो फिर एक दिन विद्यापति ने ललिता से बोले कि अरे तुम्हारे पिताजी हर दिन कहाँ जाया करते हैं, क्या कहें, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और उन्होंने जब आते हैं दिव्य सुगंध का हमको आभास होता है, लेकिन पिताजी मना किए थे कि एड्रेस कभी नहीं बाबा ठेकेना बताना नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में ये भी वर्णन है कि भगवान कभी बता दिए थे कि मैं यहाँ तुम्हारे हाथ से बहुत दिन से सेवा ग्रहण कर चुका हूँ, आगे जाके मैं दूसरी भक्त का सेवा ग्रहण करूँगा। भक्ति जिसका तीव्र होता है तो और जिन्हें भाव ज़्यादा होता है उनका जरूर भक्ति में बस हो जाते हैं भगवान। तो ये बात ज्ञान तो था विश्वासु सबर, इसीलिए ललिता को बता दिए थे। लेकिन आज पतिदेव है, उन्होंने इतना तक बोले कि बल दिए कि विद्यापति ने तुम यदि मेरा बात को रक्षा नहीं करते हो, मैं फिर राम नाम सत्य करूंगा, तुम मेरे पति हत्या पाप लग जाएगा तुम। तब उन्होंने फिर बोले ठीक है कोशिश करता। तो पिताजी से फिर निवेदन किया, पिताजी बोले गए तुमने सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, तू मना किया था। लेकिन एक न होता लड़की है क्या कह दें। तो बोले तो चलो एक शर्त में तुमको और उनको बता के पालन करना पड़ेगा, मैं आँख में उसको पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। लेकिन भगवान का प्रणाम से आगे कुछ घटने वाला है। तो ललिता जी ने कुछ सरसों का दाना उनका दुपट्टे में बांध दी, उत्तरी में बांध दी, उनको बताया कि देखो पिताजी इसे इसे बात में शर्त में राजी हुए हैं, आपको लेके जाएंगे और लेके आएंगे, लेकिन आप अपना काम करना है, डाल देने का सरसों। तो जब लेके गए पट्टे बांध के तो उन्होंने सरसों को डालते गया उधर जहाँ पर भगवान विराजमान नीलकंदर में, नीलाद्री व नीलमणि नीलमाधव, तो वहाँ जाके पट्टी खोल दी। तो आप वो लोग आप भी दे जिन लोगों जो गया है उनको तो ज्ञात है रोहिणी कुंड है, कड़प बैठ है, और वहाँ पाताल ईशानेश्वर महादेव भी है, और कई उधर शंकर भगवान है मंदिर में, कपाल मोचन है, मार्कंडेय जी है, पुरुषोत्तम भगवान है, आदि बराह है, और काशी विश्वनाथ भी है। सामने जब जाते हैं पहले पतितवान बन है, उसका पहले अरुण स्तंभ है, और सिंह दरवाजा है, हाथी दरवाजा, व्याघ्र घोड़े दरवाजा, चार दरवाजा है। तो उस समय तो नहीं था ऐसा घना जंगल था। तो वहाँ पर जब रोहिणी कुंड में आ रहा एक कौवा ने जंप लगाया, बछेला लगाया, वो तो राम नाम सत्य हुआ, वो चतुर्भुज विष्णु होके रूप धारण करके उनका फिर भगवत धाम का प्रत्यावर्तन किया। तो उनका मन में भी आया रे हम भी यही से करें, लेकिन आकाशवाणी हुआ कि तो आप जो काम के लिए आया है वो काम पूरा नहीं हुआ है, क्या करने जा रहा है। तो अभी रोहिणी कुंड आप देखते हैं तो पानी नहीं है, एक गड्ढा जैसे इतना बड़ा है, उसमें थोड़ा पानी रहता है, एक भगवान का पाद पद्म है, पैसा नहीं डालेंगे तो गुस्सा आके वो पानी भी नहीं डालेगा, गाली देके बोला हट जल्दी, क्योंकि वो दूसरा लोग को डालेंगे, क्योंकि उसी रोहिणी कुंड में अभी जो प्रलय हो जाता पानी वहाँ समा जाता है, लेकिन दिखता नहीं, लेकिन शास्त्र में वर्णन है। जो भी हो तो फिर भगवान का तो उन्होंने अपना भाव से पंचरात्रि की विधि से छोटो पूजा से किए होंगे, जो भी हो उसका नियम जैसे था आरती किए, उन्होंने भी दर्शन किए भगवान को सुंदर रूप निर्माधव कर, उसका तो फिर प्रसाद भी ग्रहण किए। प्रसाद आज भी होगा कि जगन्नाथ मंदिर में आप सबको स्वागत है। जो भी हो तो फिर क्या हुआ ना, फिर लौट के जो आए उसको पट्टी बांध के लेके आए, लेकिन काम तो हो चुका है। तो फिर कुछ झाड़ी में बंधे के पीछे बांध दे, हाथ में बांध के आ गए गुस्सा से कि आज भगवान को लेके चला जाएगा। ये फिर जब ललिता पूछा कि पिताजी तुम्हारे दामाद कहाँ है, बोला पागल को बांध के आया, अरे भगवान को लेके जा चला जाएगा। तो फिर भाग भाग के गए रो रो के, फिर उसको खोल दिए, फिर आए। तो अभी तो सब कुछ पक्का हो गया उनका। तो उन्होंने बोले मैं अभी फिर हमारे राज्य को मैं जाता हूँ, वहाँ महाराज ने मेरा अपेक्षा में है। उन्होंने बोला मेरा हालत क्या होगा, क्यों शादी हो चुका था उनका। तो बोला कि कोई चिंता की बात थोड़ी है, मैं वो लौट के आऊँगा तो हमारे पत्नी बन के ही तुम रहोगा। जैसे कि शास्त्र में एक सीरियल बनाया है उसमें वर्णन है कि उनका एक पत्नी भी उधर थे, ब्राह्मण पत्नी। अब दो पत्नी का परिवार है, जो कि दैतापति पंडा है, जो कि अनवसर समय में भगवान का सेवा करते। जो भी हो तो फिर वहाँ गए, राजा को खबर दिए, राजा से प्रेम में गदगद हो गए, और आज्ञा माला लेके दिए थे उनको, माला जो पहनाए उन्हें भगवान का स्वरूप ही माना कि इतना दिन तक उन्हें उपवास थे, और राज्य में खबर दे दिए कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा साथ जो जाने वाला मेरे साथ चलो जिसको जाना है। तो सभी लोग भक्त थे सब चल दिए, लेकिन जब वहाँ गए नीलकंदर में भगवान नहीं थे, अंतर ध्यान, क्योंकि भगवान ये जगन्नाथ रूप में तुमको दर्शन देना था। तो फिर बहुत ही उसका जीवन में आघात लगा, लेकिन भगवान बोले कि इसे भी है वर्णन है कि लड़ाई करने के लिए भी तैयारी था, हो भी चुका था, इसे पर लड़ाई भी कुछ शास्त्र में वर्णन है, उसको बंद कैदी कर लिए थे, लेकिन निर्बाध हुआ, आकाशवाणी हुआ कि तुम छोड़ दो, अब मेरे को तुम इसी रूम में दर्शन नहीं कर सकते, तुम जाओ बांके महा वहाँ दारू विग्रह रूम में तुमको दर्शन दो। तो वहाँ राजा कीर्तन सकार वहाँ गए, तो चक्र तीर्थ है परिक्रमा क्षेत्र परिक्रमा में आता है, तो वहाँ से भगवान को लेके आए, लेकिन बनाएगा कैसे, किसका कोई यूट्यूब में की बात कहीं तो इसे भगवान का विग्रह अभी क्लिक करके निकाल सकते हैं इसे चेहरा होना चाहिए। तो फिर सारे राज्य में जितना भी कारपेंटर बढ़े थे उनको सब बुलाया, लेकिन सब आए आके उनका सामान नष्ट हो गई, कोई बना नहीं पाए, लेकिन ये है कि बुढ़ा आया जो कि विश्वकर्मा, उन्होंने राज्यसभा में बोले क्या हो रहा है यहाँ, बोले अरे कि बुढ़े तुम क्या करना है, तुमको क्या मालूम है इसके बारे में, क्या जब पूछताछ करते हो, अरे कम से कम हमको तो अंदर थोड़ा बुला रहा जैसे मैं मुलाकात करता हूँ। तो बोले ठीक है, राजा भक्त है अभी परेशान भी है अभी कि कैसे विग्रह बनेगा, तो अभी इतना सामग्री नष्ट हो रहा है, तो बाबा आज के बोले कि यही वाला है क्या, बोला हाँ यही वाला, तो अपना नाखून से उठा दी, तो वो राजा को विश्वास हो गया कि ये बना सकता है, लेकिन एक शर्त में, कितना दिन तक, 21 दिन तक अलग मैं रहूंगा, वहां कहीं नहीं आना जाना नहीं, शर्त में राजे हो गए राजा, फिर वहां को उसको डाल दिए, हर दिन माता गुंडिका साथ गुंडिचा का साथ जाके जो ठाक ठुक सब सब शब्द हुआ करता था ना उसे सब सुना करते थे, बुढ़ा अभी जिंदा है बोल के। लेकिन ऐसे ऐसे समय आया, तब तक कितना 15 दिन हुआ था, तो रानी तो जिद के बोले नहीं ये बुढ़ा तो मर गया होगा, अभी कोई आवाज नहीं निकल रहा है, दरवाजा खोल दिए, तो भगवान अभी जो रूप हम देखते हैं ये रूप में विराजमान, ना उसका आंगुल है ना पैर है, आंख पूरा चक्का जैसे तबला का जैसे है, मुख भी बहुत बड़ा है। तो राजा बोले क्या हो गया हमारे तपस्या का कौन, तो भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं है, तुम चाहते हो तो सोने चांदी के लगा सकते हो, मेरा सब है। तो आज उसी जो प्रसंग हम लोग को आए, तो आज जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिन है, लेकिन जहां पर अभी बड़ा मंदिर है ये आविर्भाव स्थली नहीं है, सुंदरातड़ जो है वहां उनका आर जगम वेदी वहीं, और राजा इतना ही नहीं संक्षेप में बोल रहा हूँ अभी क्योंकि समय हो जा रहा है, तो वहीं उनका जन्म स्थान है। ये बाद में फिर उन्होंने बोले कि हमारे रहने का घर तो होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, तो उन्होंने बोड़माला नामक एक पर्वत से ये अभी लोग आप जो पत्थर देखते हैं वहाँ से लेके आए, उसमें कोई क्रेन पर नहीं था, एक काठ लकड़ी का सकड़ बना के करते थे, अभी जो कि नवकड़मर में जो सकड़ बनता है उसी ऐसे ही बना के वहाँ से पत्थर लेके आए, ये भवन निर्माण मंदिर निर्माण हुआ, ऊपर जितना है नीचे इतना है। तो फिर उसको प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो भगवान कैसे विराजमान करेंगे, तब तो गए कन इंद्र दोनों महाराज ब्रह्म लोग तक गए, तब तक यहाँ तक कई चक्कर चल चुका था, सत्य तीर्थया द्वापर कली आ चुका था, तो वहाँ से जब ब्रह्मा को लेके आए देखे कि यहाँ पर दूसरा राजा कब्जा कर चुका था जिनका नाम गाला माधव, तो फिर आपस में फिर लड़ाई की तैयारी होने वाला ही था, तो फिर काक भूषणी जी ने बोले कि ये मंदिर जो है इंद्रदमन महाराज का आपका नहीं है, लेकिन राजा विष्णु भक्त है इसे दो हिस्सा कर लिए, राज्य बना के भगवान को पूजा चालू की। तो आज जो तिथि है 12 महीना में भगवान का 13 जात्रा होता है, एक एक्स्ट्रा होता है अलग से, जैसे 12 महीने पुरुष तो महीना होता है ना, ऐसे ही वो भी हमेशा नहीं आते, 3-4 साल का बाद आता है, लेकिन भगवान का ये 12 महीना में 13 जात्रा होता है, जन्माष्टमी दोड़ पूर्णिमा रक्षाबंधन ऐसे ही 12 महीना में 13 जात्रा होती है। उसी से शास्त्र में जो निराद्री महोदय है उसमें वर्णन है कि आज जो हो आद्य पर्व है भगवान का, आज भगवान का जन्मदिन है, इसीलिए इसे इंद्रदमन महाराज ने ब्रह्मा जी को पूछे थे कि अच्छा आप वैशाख का व्रत का तो बता दिया, ज्येष्ठ का भी बता दिया, फाल्गुन का भी बता दिया, लेकिन अभी जो ये ज्येष्ठ महीना में जो पूर्णिमा होता है ये पूर्णिमा तिथि से लेके इस सब का क्या वर्णन आप बतलाए, तो ब्रह्मा जी ने ये इंद्रदमन महाराज को बतलाए। आज भी जो सेवा हो रहा है ये ब्रह्मा जी ने सब बताए थे, जो मादारापान जी में अभी भी लिपिबद्ध है। अभी भी ऐसे एक ग्रंथ है जो निराद्री महोदय है, उसका हिंदी बंगला उड़िया में आपको मिल सकता है। इसी में दो भाग है, दो भाग में एक में पूजा पद्धति है और एक उत्सव लिखा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। जो भी हो तो उसी हिसाब से आज भी और कोई भी रीति रिवाज बदला नहीं, ऐसे ही चल रहा है और कोई बदला नहीं सकता। कुछ जिन लोग बदलाया उनको भी हालत बहुत गंभीर कर दी। रामानुजाचार्य ने आए थे, उन कुछ रीति रिवाज बदलने चाहते थे, रात में गुरुदेव ने उनको लेकर कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया। इसलिए साहस भी नहीं करना चाहिए बदलने के लिए, वो तो एक आचार्य थे जो भी हो। लेकिन भक्त का कुछ सेवा भाव से किस सेवा स्वीकार करते हैं, जैसे कर्मा बाई का खिचड़ी, एक भक्त ने पान दिए थे उसे भी पान चलता है, एक लाख रुपया का पान था। जो भी हो तो आज का दिन के लिए उन्होंने बोले कि आप एक और कुआं है जो कि कल्पवट से उत्तर दिशा में जो साल में एक बार व्यवहार किया जाता है, उसको रात का पहले दिन, जैसे आज पूर्णिमा है तब पहले दिन उसको तीसरा पौर में उसको सफाई करो, उसी पानी से 108 घड़ा का पानी का व्यवस्था कीजिए और वो ब्राह्मण देके उसको शुद्धि किया जाए, जिससे गंगे से जमुना चाहिए गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जड़ेश्वरी समझ दिख। तो ऐसे ही उन्होंने हल्दी चंदन और इत्र वगैरह से पवित्र करते हैं और उसमें चार लाइन में उसको रखा जाता है और स्नान मंडप पहले सजा जाता है, उसमें बंदमार देके चंदवा देके जो कि यहाँ नहीं मिलता है सब चंद्रा तब भी बोलते हैं, तो उसको सजाने का बाद फिर भगवान को फिर रस्सी में बांध के दैतापति लोग पंडे लोग उनको पंडित विजय कराते हैं, जैसे रथ यात्रा में होता है। स्नान वेदी में फिर सभी लोग दर्शन करते हैं, आजकल तो सुविधा है यांत्रिक साहज्य में, भगवान पूर्वमुख है रहते हैं और सब स्नान यात्रा भगवान का होता है। उसमें वर्णन है कि भगवान को स्नान समय में जैसे हम लोग यहाँ सफेद वस्त्र हुआ कभी पीला और नीला वस्त्र भी बांधते हैं समय अनुसार, तो ऐसे अभिषेक का वस्त्र लेके पर वहाँ में जो 108 घड़ा का पानी लेके फिर भगवान का स्नान यात्रा का महोत्सव होता है। उसमें वर्णन है निराद्री महोदय में कि भगवान जगन्नाथ जी को 35 घड़ा पानी से व कलश जल से अभिषेक किया जाता है और बलदेव को 33 घड़ा से और सुभद्रा जी को 32 घड़ा से और सुदर्शन जी को 18 घड़ा से, तो लगातार और भगवान को अभिषेक चलता है। तो इसीलिए देवोपन में भगवान तो देवदेव महादेव का भी देव है और देवता लोग भी आते हैं भगवान को अभिषेक करने के लिए, अभिषेक दर्शन करने के लिए मनुष्य रूप में। तो भगवान का लगातार अभिषेक चलता है और हमारे इस्कन मंदिर में प्राय जगह में अभिषेक होता है। इसी हिसाब से जगन्नाथ जिन लोग जा नहीं पाते हैं तो अभी जगन्नाथ जी भी यहाँ पर आए, जो कि भक्त लोग जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान ये बहुड़ा यात्रा में उल्टे रथ और सीधे रथ में और स्नान यात्रा में भगवान अपना घर से अपना और सिंहासन छोड़ के बाहर के आते हैं, उससे दयालु और कौन हो सकता है। इसलिए भागवत में वर्णन है कि कया कम्बा दयालु शरण वर्जन, इसे भगवान का शरण में नहीं जाएगा तो कौन से भगवान को जाएंगे। लेकिन ये स्नान का बाद भगवान को फिर एक भी बहस किया जाता है, इसे तो भगवान का 32 बहस है। आप पहले हमारा दिजराजपुर में यहाँ दिए थे सेमिनार, उसमें आपको ज्ञात होगा, उसमें एक बहस है गजानन बहस। तो भगवान आज महाअभिषेक का बाद गजानन बहस होते हैं, मतलब क्योंकि गणेश का बहस होते हैं, गणेश बापा मरैया महाराष्ट्र में बहुत फेमस है आपको मालूम होगा। तो यहाँ एक दक्षिण भारत का एक भक्त थे, उनका मर्यादा बा उसका भाव के लिए उन्होंने गजानन बहस हुए थे, क्योंकि वो कर्नाटक देश से आए थे, वो ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे और बहुत निष्ठा पुराण भी थे, लेकिन वहाँ ब्रह्म पुराण में उन्हें पढ़ाई किए थे श्री क्षेत्र में नीलकंदर में नीलाद्री रूप में ब्रह्म वहाँ रहते हैं, लेकिन ब्रह्म बा भगवान का चेहरा कैसे उसको भी मालूम नहीं था। अभी जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ का और शिव विग्रह को, तो उन्होंने वहाँ से चल के आए थे, कितना मेहनत किए थे भक्त, लेकिन उसी दिन पहुँचे थे कि आज का तिथि जो भगवान का बहुत भव्य अभिषेक हो रहा था। अब देखेंगे पंडे लोग बहुत सोने का चैन भी डाले रखते हैं, हम थोड़ा सा मोटा है लेकिन उससे भी डबल तिप्रम मोटा है सबको, क्योंकि भगवान का दिव्य प्रसाद और भी दिव्य सेवा में नियोज है, और ये साधारण कोई इंसान नहीं है, ये भगवान का अपना परिवार है, उनका सारूप मुक्ति हम नहीं देख पाते हैं। तो उसी समय उन्होंने आए थे, देखिए कि अरे कैसे भगवान है कैसे ब्रह्म है, तो उनको मन नहीं लगा क्योंकि उनका आराध्य देव थे गणेश जी। तो फिर उन्होंने आपस जा रहे थे, तो भगवान बोले ये तो बदनाम करेगा, और ये यदि बता देगा कि पुरी में जगन्नाथ ना ब्रह्म नहीं है भगवान नहीं है, तो सब लोग उसका फॉलो करेंगे अनुसरण करेंगे। तो भगवान क्या किया, अपना वेश बदला के वहाँ रास्ता पर जाने के रास्ते में रुके। बोले बाबा आप कहाँ गए थे? बोला मैं गया था ब्रह्म को देखने के लिए, कहीं ब्रह्म ब्रह्म तो है ही नहीं, यहाँ ब्रह्म पे पड़ गया मैं, अब ब्रह्म में शायद भगवान डाल दिए होंगे। तो फिर देखिए तो बोले आप जाओ दोबारा जाओ देखो। बोला अरे नहीं तुम क्यों मेरे को परेशान कर रहे, इतना दिन से मैं दूर से आया भूख प्याज से, अरे कर ब्रह्म ब्रह्म तो नहीं था, हमको ब्रह्म में डाल दिए, मैं जा रहा हूँ। बोले आप मेरा बात तो सुन लीजिए, तो जो फिर आपस आके देखे तब तक भगवान आज भी हम लोग अभिषेक का बाद हमारे विद्यापति प्रभु और जादवपति प्रभु उन्होंने गणेश वेश व गजानन वेश का व्यवस्था किए हैं, तो वहाँ आएंगे तो आप जरूर दर्शन करेंगे। अब प्रसाद की भी व्यवस्था है, आप जल्दी आएंगे तो फिर अभिषेक भी कर सकते हैं, सभी के लिए अभिषेक का व्यवस्था है। पूरी में तो हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मायापुर जगन्नाथ मंदिर में रहा 2 साल, तो वहाँ देखा है कि भक्तों लोग सब गंगा से पानी लेके आते हैं और सभी लोग और अभिषेक करते हैं, छोटे से बड़े कोई जात पात भगवान के पास है ही नहीं, और प्रसाद भी दिया जाता था वहाँ। मैं 2 साल रहा हूँ तो उसका फिर यहाँ भी हम लोग चालू किए। आप लोग टाइम में आइए, फिर लगभग 10 बजे से व्यवस्था चालू होगा, तो प्रसाद बाद आइए। तो उन्होंने फिर जब लौट के आए देखे कि अब 2 भाई सरा गणेश भैंस है, शास्त्र में वर्णन है कि 2 भाई गणेश भैंस है और सुभद्रा जी कन्या भैंस है। तो आज भी यहाँ आपको ये वेश दर्शन मिलेगा। उन्होंने जब देख दिए कि गणेश वेश व गजानन वेश अपना आराध्य देव, क्योंकि भगवान हर भक्त का इच्छा पूरी करते हैं, नहीं तो एक ही जगन्नाथ बा कृष्ण बन के रहते कि नहीं तो कुदंडधारी हो जाते। इसीलिए भगवान भी स्थान कान पात्र अनुसार देश का अनुसार अपना रूप धारण कर देते। इतना ही नहीं, उड़ीसा बंगाल में चावल बहुत खाते हैं कि नहीं, आप लोग भी खाते हैं चावल, लेकिन और एक चावल बनता है पंता, जो कि पानी से उसको भिगो के रखा जाता है। आज का जो मौसम है अभी गर्मी है, भगवान पहले उसको खाएंगे दही का साथ, उसके बाद दर्शन देंगे। महाराष्ट्र में अभी गया था, एक परिवार में था, मैं बोला ऐसे बोले कैसे खाएंगे कैसे खाएंगे, बोले तो वहाँ का एक प्रभु जी थे, फिर हमारे पत्नी जी ने कभी गर्म छोड़ा और ठंडा खाया नहीं, इतना कि उन्होंने मजाक की बोले करके बोले कि उन्होंने आइसक्रीम भी जब खाते हैं ना गर्म करके खाते हैं। देखो इतना अज्ञात है कि जगन्नाथ का जो पंता है जो पखाड़ है जगत प्रसिद्ध है, जगन्नाथ का भात जगत पर सारे हाथ, इसलिए कभी आप जाएंगे तो पंता पर पखाड़ खा के जरूर आने का। तो आज भी यहां पर उसी हिसाब से लगभग किया जाएगा, पता नहीं पंता भात बनाएंगे कि नहीं, बनना चाहिए। लेकिन तो भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा जाता है, जो कि आप भी घर में उसका प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका एक किताब भी निकला है, पता नहीं हिंदी में इंग्लिश में है कि नहीं, उड़िया में है उसका, कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जो भी हो तो उन्होंने देख के फिर गदगद हो गए, फिर नाचने कूदने लगे, फिर उसके साथ की विकार हुआ उनका और गए नहीं। उन्होंने ये गणपति भट्ट गए नहीं, अब पूरी में ही भजन करते हुए सारा जीवन बिता दिए। तो आज हमारे ये जगत में इतना आरो वैज्ञानिक लोग एडवांस किए अग्रगति किए, तो यहाँ से बैठ बैठ के उसका हम देख सकते हैं, सीधे प्रसारण होगा, और जिन लोग जा सकते हैं खुद अपना भी अभिषेक कर सकते हैं। इसीलिए सभी को आमंत्रित है, और जगन्नाथ का तो लीला ऐसे बहुत है, फिर भी आप लोग को एक छोटा से लीला बता देता हूँ। जो कि एक भक्त थे उनका नाम रघु नाम था, तो फिर जगन्नाथ कभी कभी सखा हल्का सा मजा लेते हैं, चोरी करने का आदत है ना, ब्रजे प्रसिद्ध न बनी था चोर, माखन चोरी का प्रसिद्ध है, तो वो आदत कहाँ छोड़ता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं पंखा बहुत तेज से घूमता है, बटन दबा दिए तो एक चक्कर घूम गया, लेकिन भगवान का बटन तो हमेशा चलता रहता है। तो उनको बोले कि अरे भाई चलो चोरी करके चलते हैं, चोरी करने के लिए। तो उन्होंने बोले अरे तुम क्या चोरी करेंगे, बोले कटहल चोरी करते हैं, अभी सीजन है कटहल का, पकने वाला है। तो बोले जगन्नाथ जो बोले महात्मा जी बोले अरे यार मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी बूढ़ा उम्र में हमको क्यों बेइज्जत करना चाहते हो। लेकिन मित्र तुम देखो मेरा बात नहीं मानोगे तो फिर आज से रास्ता बंद। तो उन्होंने बोले कि भक्त ने अरे राजा तो मेरा शिष्य है तो वहाँ से मांग के तुमको भोग लगा। बोले देखो चोरी करने में जो आनंद है, ये भोग लगा के हमको गंगे जी जमुना जीवा चक्र मुद्रा और शंख का घुमाना ये सब हमको पसंद नहीं है, चलो चलते हैं। चलो जब वहाँ कटहल का बगीचा में पहुँचे, बोले कि अब माली तो वहाँ डंडा लेके रहा था, बड़ा बाम्बू लेके रहा था, मिलेगा तो उसको भी मौका नहीं मिलता ना हमेशा। तो उन्होंने फिर भक्त ने बोला कि आज बड़े वाले लेंगे छोटे वाले, तो माली आ गया हम भाग के दौड़ो द्वार सिक्योरिटी आ गया। तो फिर भगवान ने बोले देखो चुप रहो, ये तो वो बहुत पिटाई होगा, फिर मामी तो एक बार पिटाई कर दिए थे मेरे को बांध दिए थे, लेकिन यहाँ तो मामी नहीं है और माता नहीं है तो दोनों लोग पिटाई कर देंगे। तो भगवान कटहल का पेड़ से थोड़ा उझल गए, बोले इधर आ जाओ बगल में, फिर उनको फिर आरोप छुपा दिए। तो फिर तक तो उन्होंने फिर थके मने गर्मी का दिन था, फिर खराटे लेके फिर सोना ने खराट वाला करके कर करते करने लगा। तो बोले ए बुढ़िया मौका है, तो अरे भगवान बोले चलो ऊपर, फिर ऊपर उड़ गया। अब भगवान इधर नीचे ऊपर से का चार पक्का छोटे बड़े बैच चालू कर दिए, फिर हला कर दिया उन्होंने, बोले बड़े गिराऊं छोटे बड़े अब लंबे वाले पक्का वाला। तब तक फिर उन्हें जाके आके फिर बहुत बढ़िया से धुलाई कर दी, बढ़िया से प्रसाद मिला उनको, बांध दिए। फिर बांध के जाकर राजा को बोले, राजा बोला अच्छा कौन से चोर है, उसको बढ़िया से सजा दिया जाएगा। राजा आके देखे जा अपना गुरुदेव है, बोले अरे मेरा गुरुदेव को तुम क्यों बांधा, बोला नहीं गुरु महाराज ये तो चोर है, इसलिए कटहल पेड़ का ऊपर उठा था एक भाग गया। भगवान उसे चंपट, तो हमारे जगह जो और मायापुर में जगन्नाथ जी वो भी कटहल चोरी करते हैं, एक भी पकड़ा गए थे। तब से वो कटहल में जो पहले होता है पहले जगन्नाथ जी को दिया जाता है, कटहल का जंगल में जो था उसमें सरकार का था, अभी तो अपना ही है कटहल आम लीची जितना भी जगन्नाथ जी का। तो भगवान का ये आदत ना छोटा ना छोटेगा। तो फिर राजा बोले खोल दीजिए हमारे गुरुदेव को, तो भक्त को खोल दिए। खोलने के बाद बोला मैं यहाँ नहीं बताऊँगा ये बात, आपका राजमहल में चलिए मैं वहाँ बताऊँगा। तो राजा को पर ये कहानी सुनाई वहाँ, बोले भगवान जगन्नाथ खुद आए थे और वो मेरा मित्र मानते, मैं भी उसको मित्र मानते, उन्होंने मैंने कोई कटहल पेड़ में चढ़ा दिए और जब माली आया तो भाग गए उन्होंने, दौरान जो आया जब देखभाल करने वाले तो भाग गए। तब से जगन्नाथ जी बोले आज से मांगने क्या एक नहीं ये बगान ही जगन्नाथ जी का। तो भगवान को एक कटहल कितना प्रिय होगा आप ये लीला से समझ सकते हैं। तो आज वही पवित्र दिवस है, ये पवित्र दिवस में हम सबको जो मौका हमको मिला है अभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के, सब सूत्री गाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, उनका लीला सुनने के लिए। तो जगन्नाथ का लीला तो आप लोग जानते हैं, फिर उसका बाद जगन्नाथ का फिर और दूसरा लीला होगा, क्यों भगवान को बहुत नहलाना पड़ा ना, अभी नहलाए हुए खूब गर्मी भी मौसम है, तो उसका बाद भगवान को फिर भोकार का लीला चलेगा। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको भोकार नहीं होती है, वो लक्ष्मी का साथ अंतरंग में अपना लीला करते हैं, वार्तालाप करते हैं और भक्तों लोग को सेवा का अधिकार देते हैं, क्योंकि उसमें जो ललिता जी का पुत्र लोग को फिर उसे में लगा हुआ है और दैता जो पूजा करते हैं पंडित लोग और उन लोग को अनवसर समय में फिर मिलता है भगवान जब अभी भोकार का लीला करेंगे और जब वहाँ रहेंगे सुंदराचरण में गुंडीचा मंदिर वहाँ से पर उनको मौका मिलेगा सेवा का। और हमको तो सेवा आज ही मिल रहा है इसलिए ये सुजुका हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और बाद में फिर भगवान 15 दिन के लिए फिर चुपचाप रहेंगे अपना अवसर लीला करेंगे, उसमें भगवान को दवाई वगैरह दिया जाएगा ज़्यादा गरिष्ठ जैसे मसालेदार और घी वाला नहीं देंगे, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। कर्पूर मिश्री का पानी ज़्यादा है, लेकिन आज थोड़ा परिवर्तन है तो थोड़ा नॉर्मल माखन दूध वगैरह गर्म करके दिया जाता है। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी का लीला भी अनंत है। तो हम जो भक्त लोग से सुना था, जो भी थोड़ा अध्ययन किया था, उसमें आप लोग को सुनाया। जगन्नाथ बड़े सुभद्रा महारानी की, देवस्नान पूर्णिमा की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।